से मुझे पूर्णावती करनी है, इसलिए बहुत संकोच रूप में मैं اب تو وشنر استر تھے. بلواچار جی نے جب یہ کہا تو گوسائی جی نے ان کے پتر وٹھل ناتھ جی نے کہا وشدھ متھرا جو ہے وہ یمنا جی کے تٹ پر ہے, تو یمنا کے تٹ پر ہونے سے وہ متھرا شدھ ہو گئی. اور سن نکٹے والے ایک یمنا کے کنارے پر تٹ کنارہ, جو کوئی نہیں سمجھ پاتا اس کے لیے تھوڑی ویسی بھاشا بھی ہے, تو یمنا کے کنارے پر وہ وشدھ متھرا اور ایک وہ متھرا کیسی جہاں بھگوان کا بھی سانگتیہ, تو یمنا جی کا بھی سانگتیہ اس متھرا میں شدھ ہو, تو بھگوان کا بھی سانگتیہ دونوں سے جب سمبندھت ہے پھر اس متھرا کو آسری بھومی کہنا وہ ادور درشتا ہے, وہ اجان ہے, اس کا دھیان کم ہے, اس کا ادھیکار کم ہے, چھوڑو وشے. اس درشتی سے جب آؤ تو آپ کا آتا ہے کہ مہاراج وہ بھگوت کا پرتاپ وشے کیا ہے. جمنا داس جی کے دوارا جب ہمیں وہ پتر ملا نمنتر پر, اس میں ہم نے دیکھا ملاپ آیوجن میں انہوں نے کہا تھا کہ بھگوت کا پرتاپ وشے کیا ہے اور یتھا روچی یتھا دیکھا لوگ اس کا ورنن کرتے. تو اسی طرح سے جب وچار کریے تو بھاگوت میں سب قرآن ترگت جو مہاتما ہے چھ ادھیائے کا جو بھاگوت سپتاہ میں بانٹا جاتا ہے اور اس میں پرتیکش یہ دکھا ہے کہ پریم بھاگو داکشویم پرتیکشم کرشن وہی سویگوس میا بھاگوت جو ہے وہ پرتیکش کرشن کا سوروپ ہے, اپرتیکش نہیں, پروکش نہیں, دکھائی نہیں دیتا ایسا نہیں, پرتیکش کا وہ سامنے بالکل. اور وہ اندر یعنی بھاونا نہیں ہے, یہ تو پستک ہے, کاغذ ہے, کاریہ اکثر لکھے ہیں, ایسی یعنی بات ہے تو چھوڑو وہ تو بہت نیچا ادھیکار ہے اس کا. اس لیے وہ کرشن کا سوروپ ہے, پرتیکش ہے شریمد بھاگوت. اور وہ بھاگوت کس کا دھن ہے تو کہا شریمد بھاگوتم پران تلکم ید ویشوانام دھنم. دوسرے کا ٹھیک ہے, اس کا آدھار لو, آشرے کرو, انیک ادھیکار تمہارے دیکھتے ہمیں اس کا ملے گا پھل, باقی وہ دھن جو ہے اس کا وہ ویشنو کا ہے. اور اس لیے کیسے کیسے اسکند پران کے مہاتم میں یہاں تک ورنن کر دیا, یہ شری کرشن بہاری گو بھجا سواد لو روپا مکتا وپی نرا کانکھا تیشام بھاگوتم دھنم. بھاگوت کس کا دھن ہے؟ بھاگوت تو بہت اونچی وستو ہے. بلو آچار جی نے کہا بھاگوت کی کتھا اگر کوئی کہتا ہے مہاراج میرے یہاں بندے جی کریے, وہ کرتا ہے وہ بھاگوت کے سوروپ کو سمجھا نہیں. اب تو زیادہ وویچن میں نہیں, اس لیے بلو آچار جی نے تتواس دیپ نبندھ لکھا. اس تتواس دیپ نبندھ میں تین پرکرن کیے, شاستراتھ پرکرن, سرمنڈل, بھاگوتار, بھاگوتار پرکرن میں ایسا لکھا تب ہردیم اوگائی اوگائی اس کے ہردے کو بار بار کٹوروں کے ہردے میں کہاں کیا بات بھری ہے اس کی بار اس کو بھاگوت سنا ہو. یہ سب استھتی کس کی ہے جس نے بھاگوت کا بہت کچھ منن چنتن کر کے اور اس کے سوروپ کا اس کو درشن ہوا ہے. ہمارے گرو جی ماسٹر چندر ودیالیہ میں جب ان سے ادھیئن کرتے تھے مرلی دھر جی مشرا, آج ان کے مجھے اسمرن, وہ کاشی استھ کاشی کے تھے, وہ کہتے تھے بھیا شاستر کرپا گرو کرپا. شاستر کا یعنی کسی لوکک ادیش کو لے کر کے اس کا ادھیئن کرو گے, آرادھن کرو گے, تو وہ اس کے سوروپ کا درشن نہیں ہو سکتا. اس لیے انہوں نے کہا کہ جو شری کرشن کے ایک ماس بہار کا جو بھجن ہے اس کے آسواد میں لو روپ ہے اور مکتا بنے آکانکھا مکتی کی طرف ان کی بالکل آکانکھا ہی نہیں. ان کا شریمد بھاگوت جو ہر اٹھانے آج تو ایسا کر کر کے اور پھر تیسرے سکند میں آپ آئیے جہاں برہما اور نارد کا سنواد, برہما اور نارد کے سنواد میں لمبا پرسنگ لیکن میں بہت سنکھیپ میں آپ کے سامنے. تو یہاں انتو گتوا پھر برہما جی نے نارد جی سے کہا بھیا ایک کام کرو, دیکھو ادم بھاگوتم نام ಯನ್ಮೆ ಭಗವತೋದಿತಂ ಸಂಗ್ರಹೋಯಂ ವಿಭೂತೀನಾಂ ತ್ವಮೇತಂ ವಿಪುಲೀಕುರು. ಯೇ ಜೋ ಮೈನೆ ತುಮ್ಸೆ ಕಹಾ ಯದಿದಂ ಮಯ ನಿರೂಪಿತಂ ತತ್ ಭಾಗವತಂ. ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯ ಐಸಾ ಲಿಖತೆ ಹೇ ಶ್ರೀ ಶುಭೋಧನಿ, ಯೇ ಜೋ ಮೈನೆ ತುಮ್ಸೆ ನಿರೂಪಣ ಕಿಯಾ ಯೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಹೈ ಔರ್ ಮೇರೆ ಲಿಯೆ ಕಿಸ್ನೆ ಕಹಾ ಮೇ ಮಯಂ ಭಗವತ ಉದಿತಾ ಹೂಂ, ಭಗವಾನ್ ನೇ ಕಹಾ ಹೈ ಮುಜ್ಸೆ. तो इसलिए वो ब्रह्मा की पात्रता और वहां के अधिकार को विचारिए जहां साक्षात भगवान अरविंद से कह रहे हैं भागवत ब्रह्मा. और भैया संग्रहोयम विभूतिनाम, विभूतियों का यह संग्रह है, इसलिए तुम क्या करो. तो वल्लभाचार्य ने कहा तुम उत्तम हो अधिकारी नारद, तुम उत्तम अधिकार के, इसलिए एतत् विपुली गुरु विस्तरे में वर्णय, विस्तार से इसका वर्णन करो. और किस दृष्टि से जो प्रपाच्य विषय है भागवत का, वहां इंगित किया, लक्षित किया ब्रह्मा जी ने नारद को. यथा हरौ भगवती नृणां भक्ति भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारौ इति संकल्प्य वर्णय. इस संकल्प को लेकर के वर्णन करो नारद. वो सर्वात्मा सबकी आत्मा, अखिलाधार जगत प्राणी मात्र चराचर का जो आधार है भगवान है श्री हरि है, उसमें प्राणियों की भक्ति कैसे हो, ऐसा विचार संकल्प करके वर्णन कर. क्यों? कलयुग के अंदर वल्लभाचार्य जी ने कहा भक्ति मार्ग के सिवाय जीव का उद्धार हो नहीं सकता. भक्ति मार्ग इतना सरल है और कठिन भी है दोनों बात. क्यों? वल्लभाचार्य जी ने वहां तत्वादीप निबंध में उस भक्ति का जब अर्थ किया तो आपने वर्णन किया कि भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है. तो भज सेवायाम जो है वह भज है, वो प्रकृति है, और उसमें तिंग जो है वो प्रत्यय होता है, उसके आने से वो भक्ति बनती है. तो प्रकृति और प्रत्यय व्याकरण की दृष्टि से दोनों का अर्थ अलग होता है. तो भज जो प्रकृति है उसका अर्थ है सेवायाम सेवा, और सिंह जो प्रत्यय हो रहा है उसका अर्थ है प्रेम. अर्थात वल्लभाचार्य कहते हैं प्रेम पूर्वक जो सेवा है वो सेवा का अर्थ है भक्ति. ऐसा प्रतिपादन आपने किया इसलिए जहां भागवत का प्रतिपाद्य विषय है भक्ति, और उसी दृष्टि को लेकर के कुंती माता ने ऐसा वर्णन किया. तथा परमहंसा महाराज, वो अमरात्मा जो परमहंस कोटि के मुनि हैं, उन मुनियों के लिए भक्तियों विधान करने के लिए आप प्रकट हुए. हम तो स्त्री हैं क्या समझे, जबकि कुंती का अधिकार बहुत ऊंचा वल्लभाचार्य जी के वंश में आगे चौथी पांचवी पीढ़ी पर हरिराय महाप्रभु हुए. हरिराय महाप्रभु ने एक शिक्षा पत्र लिखा, उसमें ऐसा लिखा कि कुंती वदी दुर्गम भाग्यम कस्य भाग्यवतो भवे सद्य प्राण विमोकोऽत्र श्री कृष्ण विरहे. संसारी प्राणी संसारी प्राणी के इधर उधर होने से उसके वियोग में मरता है, रोता भी है. भगवान का वियोग किसे सताता है? वाणी से कितनी भी बातें करे ठीक है, लेकिन वो महाराज उसके आचरण में इतना उतरे कि कृष्ण का आनंद और उसके विरह में प्रबोध मरे, ऐसा कौन हो सकता है. इस दृष्टि से लेकर के और उन्होंने महाराज ये कहा कि वो अमरात्मा मुनियों को भक्तियों को विधान करने के लिए आप प्रकट हो. वल्लभाचार्य जी ने यहाँ तथा परमहंसा नाम के ऊपर थोड़ा संकेत किया. आपने कहा वो एक हंस कोटि के महात्मा और एक परमहंस कोटि के महात्मा. हंस कोटि के महात्मा वो होते हैं जिनको विविधात्मक ज्ञान होता है, देह अलग है आत्मा अलग है, इसी प्रकार से पार्थक्य अलग पृथक पृथक अलग अलग रूप से जिसको ज्ञान है और वो दृष्टि उसकी बनी रही है, वो दृष्टि बिंदु उसकी, तो समझ लीजिए वो हंस कोटि का महात्मा है. और परमहंस कोटि के केवल आत्मा में ये पश्चंदी से परमहंसा, जिनकी दृष्टि में केवल वो आत्मा ही है दूसरी वस्तु नहीं. वल्लभाचार्य जी ने कहा इसलिए भगवान ने उस अंतकरण का नाम आत्मा रखा, और वो आत्मा जो है उसी में वो सामर्थ्य है, वो भगवान को ग्रहण कर सकती है. दूसरी वस्तु में नहीं। इसलिए अंतकरण का नाम आत्मा इस रूप से आपने वर्णन किया। अंतु कहने का सिद्धांत यह है कि समय की दृष्टि को अनुसरते हुए और लोगों को भी वर्णन करना है, नहीं तो ठाकुर जी कृपा से आप कहें जितने स्वामी जी की सेवा में चलते चले जाए कोई पता न लगे दिन कहाँ बीत रहा है रात कहाँ जा रहा है। ठीक है, लीला है। इसलिए मथुरा में जो देवकी जी ने स्तुति की उसके विषय में मैं एक पद दिखा के थोड़ा वर्णन करके और मैं फिर वर्णन। मृत्यु मृत्युव्याल भीत पलायन सर्वान् लोकान् निर्भयम् नाधिगच्छत् स्वराज्यम् प्राप्य तृष्णाद्यौ स्वस्तस्येति मृत्युरस्माद् वैति। देव की माता ने कहा जो भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख इस मथुरा नगरी में जो शुद्ध मथुरा है जिसका मैंने प्रारंभ में वल्लभाचार्य जी के यमुना स्तक को कहा विशुद्ध मथुरा तटे, उस विशुद्ध मथुरा में जब देव की माता के नेत्रों के सामने वो स्वरूप प्रकट हो रहा है और उसका दर्शन करके माता ने कहा भैया मृत्यु मृत्यु व्याल भीत पलायन। मृत्यु नाम जो ये मनुष्य है ये किससे डरता है सबसे ज्यादा? मृत्यु से। वो मृत्यु जो है उसको व्याल व्यालम सर्प, मृत्यु रूपी जो सर्प है वो इसके पीछे जब दौड़ता है तो इसको बहुत भय लगता है और भय से बचने के लिए अनेक लोगों में भ्रमण करता है और घूमते घूमते जब कहीं इसको कोई अवलंब आश्रय आधार नहीं मिलता घबराता है तो वही जगदीश जिसका ये अंश है ममई मानसो जीवलो के गीता के आधार पर भगवान कहते हैं बालक तो मेरा है। तो इसलिए भले वो उपास्त रहे संसार में भटक गया बहुत समय इधर उधर माया में लिपटा रहा कभी स्त्री को बहुत समझा कभी धन को समझा कभी प्रतिष्ठा और नाम को समझा इधर इधर ऐसे ऐसे भगवान ने इतने खड्डे बनाए कि कहीं ना कहीं कोई न कोई गोता खा ही जाता है। उससे पार करना तो सरकार का काम है तो वो लक्षण दिखाई देते हैं कि ये पार हो रहा है कि डुबकी खा रहा है। अब तो विषय लंबा बनेगा इसलिए आइए यहाँ तो वो मृत्यु रूपी सर्प जब पीछे दौड़ा अनेक लोगों में वो भ्रमण करते करते जब उसको कोई आधार नहीं मिला घबराया तो भगवान ने उसकी तरफ दृष्टि डाली और डाल के कहा बेटा घबराता क्यों मेरा बच्चा है संसार में मुझे भूल के भटक गया तू वास्तविक तू मेरा है मैं तेरा हूँ कहाँ गया तू लगता इधर। ऐसे करके भगवान ने अपने चरणारविंद का आश्रय उसे दिया और वहां आके फिर वो स्वस्थ हो गया। जो भगवान के पास पूछ लिया तो माया कहां से सकती है माया तो दूर भागेगी। तो इस दृष्टि से मैं स्वयं इसलिए उन्होंने कहा तो जिस तुम पे स्पर्श देती है तुम्हारा इस मानी ने स्पर्श कहा तुम्हारा तो भगवान के सामने नारद माया खेर नहीं था तुम इच्छा पते मुया विलज माने आगे था तुम इच्छा पते मुया दिनो हिता विकर्षण से हमारा विदित हो किया। जिसका इच्छापत नेत्रों के सामने वो माया कट नहीं सकती। अब इस दृष्टि से उन्होंने कहा वो भगवान स्वाराज्यम प्राप्त यत्र छयाद्याचार्य ने कहा भगवान ने अपनी इच्छा से कृपा करके उसको अपने चरणारविंद का आश्रय दिया। बेटा यही तेरा मूल गौर स्थान है यहाँ आ जा यहाँ परम शांति तुझे मिलेगी परम आनंद तुझे मिलेगा। उसने पकड़ लिया सब शांति से थका हुआ जैसे शयन करता है ऐसे मृत्यु भाग गई। अब यहाँ एक विषय दो मिनट के लिए करके मैं बोल कर रहा हूँ वल्लभाचार्य ने ये शब्द सुबोधनी जी मैं इसे उठाए कि तुम पाराजम एक वचन कैसे एक वचन कैसे मतलब एक चरण कैसे भगवान के दो चरण है सभी जानते हैं तो भगवान के दो जब चरण है तो उसको पाराजम जागरण की दृष्टि से एक वचन एक चरण कैसे। तब आपने वल्लभाचार्य ने कहा भगवान के दो दो जो है वो तीन चरण है एक आध्यात्मिक एक आध भौतिक और एक आध दैविक। इस प्रकार से जो है वो आध दैविक जो दो भगवान के चरणारविंद है वो भगवान के नित्य लीला में जहाँ नित्य विहार अखंड चला करता है प्रभु का वृंदावन धाम नित्य धाम वृद्धाम में वहां प्रभु के वो आध दैविक दो चरणारविंद विराजमान है और भगवान के जो आध्यात्मिक दो चरणारविंद हैं वो है ज्ञान मार्ग और शक्ति मार्ग और दो चरणारविंद जो आज भौतिक हैं वो है श्रीमद् भागवत और सत्संग। आपने कहा इस प्रकार से मुझे आध्यात्म आप घोषित करना और उनको नित्य लीला में अगर कृपा हो अधिकार प्राप्त हो तो नित्य लीला में उनका दर्शन अब उसके अतिरिक्त आध्यात्मिक दूर चरणा अरविंद ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग आज भौतिक दूर चरणा अरविंद सत्संग और श्रीमद भागवत चार हो गए। मध्वाचार्य ने कहा कलयुग के अंदर इन चारों में से अगर किसी एक का भी सच्चा उसने अवलंब ले लिया और आराधन किया तो निश्चय वो पार हो जाता है। इस दृष्टि से जो है हमारा स्वपाला जब एक वचन का बहुत गंभीर विषय समय के अभाव से कुछ थोड़ा स्वामी जी के सामने ठाकुर जी के विराजमान के साथ साक्षात श्रृंगार रस कदम मूर्ति नंदन साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही रत्यादि के द्वारा प्रतिपाद्य विषय है। सर्व वेदांत सारम ही अधिकायक वस्तु द्वितीय तन्निष्ठम कैवल्य का प्रयोजनम तो वो अद्वितीय वस्तु क्या है वो कोटान कोट प्रजांगनाओं के मध्य में विराजमान जो श्रृंगार कलम मूर्ति है वो ही वस्तु तत्व है। अति स्वस्तरुण ही कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेदनारहि निर्वाण निर्व्यापुलम सहस्रस्त निबद्ध नीव विलसत गोपी सहस्रावृत हस्तम यस्तनतापवर्ण मथिलोदारम किशोराकृति। ब्रह्मा जी ने समग्र वेद का तीन बार अपनी बुद्धि से आलोकन किया लेकिन आलोकन करने के बाद में परब्रह्म परमात्मा नंदनंदन नरेश नंदन श्री कृष्ण चंद्र में रति हो ऐसा उन्होंने भागवत सिद्धांत से निश्चय किया। भगवान ब्रह्म कार्तिकेन चरण वीक्ष्य मनीषया तदभ्यवस्यत सूचस्थो रत आत्मन यतो भवे आत्मन यहाँ हुआ सप्तमी का लोक हो गया है जैसे परमेश जुम्मन इत्यादि श्रुतियों में आत्म शब्द जो है यहाँ श्रृंगार रस मूर्ति कृष्ण का वाचक है। वेदांत में गौणस्य आत्म शब्द इत्यादि में आत्म शब्द भगवत पर ही व्याख्यान किया गया है। तो समग्र श्रीमद् भागवत का सार क्या है कि प्रेमांकुर रति का प्रचार हो और रति प्रचार के माध्यम से आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र के लीला सुख की प्राप्ति हो ये ही इसका प्रतिपाद्य विषय है। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु सेवनम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृत्यवरुध्यते त्रिकृति शुश्रूद्र तत्क्षणा। इसमें अनुबंध चतुष्टय टीकाकारों ने प्रतिपादन किया है और वस्तु तत्व का थोड़ा विवेचन करते हैं कि जहां प्रक्षिप्त अध्याय दसम स्कंद निरोध लीला में मां श्री सुखदेव जी महाराज साक्षात जो महामुनीन्द्र हैं अरे मुक्ति क्या चीज है ब्रह्मानंद को यदि परार्ध गुणीभूत भी कर दे तो उस आनंद निधि के अणु मात्र की भी जो है वो उसके सम नहीं हो सकता है। इसलिए ब्रह्मानंद को उस परब्रह्म आनंद नंदन के आनंद के अगारी तुच्छ है। भक्त लोग तो उसकी चाह भी नहीं करती है दीय मानव निगृहती बिना मत्स्य वनम जरा स एव भक्ति योगाख्या आत्यंत योगाता ये नाच वृद्धि त्रिगुणम मद भावा योग पद्यते समग्र पाप का निरसन बिना प्रेम लक्षणा भक्ति के नहीं हो सकता है। थोड़ा अजान्योपाख्यान की तरफ आप दृष्टिपात करें तो जब श्री सुखदेव जी महाराज ने ज्ञान पक्ष से उत्तर दिया देव गुरु रामला तो राजा को संकोच नहीं हुआ। राजा मुक्ति का अधिकारी नहीं है, राजा जो है वो कृष्ण प्रेम का अधिकारी है, ऐसा भी अगारी वर्णन करेंगे। क्योंकि राजा के जो पूर्वज हैं वो सब कृष्ण प्रेममय है, इसलिए राजा को लीला साहित्य हुआ है, राजा को मुक्ति साहित्य नहीं हुआ है। और वस्तु तत्व क्या है तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि वस्तु को जानता मात्र कृष्णम स्थाष्म चरित्र च भगवान रूप मखलम के मतलब वस्तु रूपियतम सर्वेशम अपभावानम भावार्थो भवत स्थिता यस्मिन विदते सर्वविदितम भवति। सर्व कारणों के कारण का जब परिज्ञान हो जाता है तो उससे अतिरिक्त वस्तु तत्व रह क्या गया, इसलिए सर्वेशम वस्तु नाम भी पाठ है, कहीं कहीं भावा नाम भी पाठ है। भावार्थो भवत स्थिता उधर कहा है सर्वेशाम भावानाम भावार्थो भवत स्थित तस्याप कृष्ण के मतलब वस्तु रूप्यता। तो सद वस्तु वस्तु तत्व क्या है, साक्षात आनंद चंद्र श्री कृष्ण चंद्र जो है वो ही सच्चे जो है वो इसके श्रवणादि के द्वारा दशरथ जो लीला है सर्ग विसर्ग आदि के द्वारा दशरथ लीलाओं के माध्यम से सत्यादि स्थायी भाव के माध्यम से प्रेम के माध्यम से आश्चर्य कृष्ण जो है वो ही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। इसलिए द्वादश स्कंद आश्चर्य लीला में पांच प्रकार के आश्रय बताए हैं, जगत आश्रय होता है, वेद आश्रय होता है, भक्ति भी आश्रय होती है, भागवत का भी आश्रय होता है और उसके बाद भगवत आश्रय होता है। तो राजा को संबोधन कर रहे हैं कथा मानते कथता महीनेताम विताय लोके परेशान विज्ञान वैराग्य विवक्षे आदि हो बचो विभूति न तो पार मानस्यम। अन्य टीकाकार इन सब दशरथ लीलाओं को पारमर्श नहीं, इसलिए नयत्व को दोनों तरफ बनाना चाहिए। यस्तु उत्तम श्लोक गुणा अनुवाद संगीयते वीक्षण अमंगल समेव नित्यम समयाद वीक्षण कृष्ण मराम भक्त वीक्षमान। ये दो अक्षर में कह करके और अपनी वाणी को जो है वो रक्षित करता हूँ।
चकोर चंद्रम श्री कृष्ण चंद्रम प्रणमामि नित्यम। आपने श्रीमद् भागवत के विषय में बड़े सुंदर सुंदर व्याख्यान सुने। ये भारतवर्ष धर्म क्षेत्र है, धर्म जिसको कहते हैं धर्म विद्या ही धर्म है। विद्या पद का आक्षेप करके भारत शब्द का अर्थ करो विद्यायाम भा मध्य रतम भारत, जो विद्या के मध्य में रत है उसी को भारत कहते हैं। ये भारत वो देश है जिस देश में हमारे ऋषि और मुनियों ने लोकोप कल्याणार्थ चार वेद षड दर्शन और अष्टादश महापुराण इनका व्याख्यान किया है। विद्या प्राप्ति करना ही मनुष्य का परम लक्ष्य है। विद्या क्या है कि सा विद्या तन मत्स्य या सा विद्या या विमुक्त है। विद्या तो वो ही विद्या है जिस विद्या के अध्ययन करने से मानव की बुद्धि में भगवत प्रेम जागे, भगवत बुद्धि बने, बस वो ही विद्या विद्या है। श्रीमद् भागवत एक ऐसा महापुराण है जिस महापुराण पर सभी आचार्यों की टीका प्रायः उपलब्ध होती है। अपने वैष्णव संप्रदाय में चार आचार्य हुए, विशिष्टाद्वैत के संप्रदाय श्री रामानुजाचार्य जी हैं एवं द्वैतवाद के समुपासक श्री माध्वाचार्य जी हैं एवं द्वैताद्वैत के समुपासक श्री निम्बार्काचार्य जी एवं विशुद्धाद्वैत के शुद्धाद्वैत के समुपासक श्री वल्लभाचार्य जी महाराज। शुद्धाद्वैत संप्रदाय में अशुद्ध ब्रह्म का निराकरण करके शुद्ध ब्रह्म की स्थापना की गई है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु एक ऐसे आचार्य हुए हैं जिनको साक्षात भगवत दर्शन हुआ, भगवत प्राप्ति हुई, अनेकों भक्तों ने उनका अनुसरण भी किया, लेकिन क्या कारण तो उन्होंने ब्रह्म सूत्रों पर भाष्य का उपदेश न किया। सभी आचार्यों के ब्रह्म सूत्र पर भाष्य मिलते हैं लेकिन चैतन्य महाप्रभु का ब्रह्म सूत्र पर कोई भाष्य नहीं। उसका मूल कारण एकमात्र यह ही है कि श्रीमद् भागवत को ही चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्म सूत्र का भाष्य माना है। जो श्रीमद् भागवत अक्षरशः ब्रह्म सूत्रों का महाभाष्य है, ऐसी मान्यता चैतन्य महाप्रभु जी की है। अतएव उन्होंने भाष्य ब्रह्म सूत्रों पर नहीं किया है। अर्थोयम् ब्रह्मसूत्राणाम् भारतार्थविनिर्णयः गायत्री भाष्य रूपोऽसौ वेदार्थ परब्रह्महितः। ये श्रीमद् भागवत क्या है? ये ब्रह्मसूत्राणाम् भाष्य, ये ब्रह्मसूत्र पर भाष्य है। ये महाभारत में क्या है कि मुक्ति का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत में मुक्ति गौण है, भक्ति प्रधान। वहां भक्ति का साम्राज्य है, भक्ति साधन भी है, भक्ति साध्य भी है। आचार्यों ने भक्ति को वैविध्य प्रतिपादन किया, भक्ति साधन भी है, भक्ति साध्य भी है। श्रीमद् भागवत का प्रकृत वर्णन करना है कि भागवत का प्रतिपाद्य विषय क्या है। विचार किया जाए तो श्रीमद् भागवत के अक्षरों से ही स्पष्ट है कि इसका प्रतिपाद्य विषय क्या है। प्रत्येक ग्रंथ में कोई न कोई उसका विषय होता है, उसका विषय से कोई संबंध होता है। अधिकारी और प्रयोजन ये अनुबंध चतुष्टय सर्वत्र हुआ करते हैं। तो जिज्ञासा तो होती ही है कि श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय क्या है। श्रीमद् भागवत अनवर्थ संज्ञा है। मैं इसकी उत्पत्ति इस प्रकार करता हूं, भगवान भगवंतश्च भगवंतश्च इति भगवन्तः भगवतम इदं भागवतम, जिसमें भगवान सबसे पहले भगवान, फिर भगवंत पद से लो भगवत अवतारा, पुनश्च भगवंत भागवता, जिसमें भगवान भगवत अवतार एवं भगवत भक्त, इनों तीनों का ही प्रधानतया वर्णन किया गया है, वो ही है श्रीमद् भागवत। अत्र सर्वो विसर्गस्य स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मन्वन्तर ईशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय, इन दस पदार्थों का श्रीमद् भागवत में वर्णन है। ये सुखदेव जी महाराज स्पष्ट कहते हैं कि इसमें दशविध वस्तु का वर्णन मैंने किया है, लेकिन जो अंतिम होता है प्रधाने व्यपदेशा भवंती मल्लक ग्राम इसी पर जो प्रधान होता है तन्मूलक ही व्यवहार हुआ करते हैं। इन दस वस्तुओं में प्रधान तया वर्णित कौन है? आश्रय तत्व वर्णित है। आश्रय तत्व क्या है? आश्रय तत्व ही भगवान साक्षात हरि है। स्मर्तव्य कीर्तितव्य श्रोतव्य निधिध्यासितव्य आत्मा वारी दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य चेष्टता व्यम इत्यादि श्रुतियों से प्रतिपादित वो ब्रह्म जो है वो ही आराध्य देव है। ईश्वर श्री कृष्ण ही इसका आराध्य देव है। श्रृंगार रसाष्टात्री देवता इसका प्रधान प्रतिपाद्य विषय है। इसमें कुछ ज्यादा ऊहा करने की जरूरत नहीं है। साक्षात वक्त्राभिप्राय एवं श्रोत्राभिप्राय दो ही प्रधान माने गए। सभी शास्त्रकारों ने अविधावृत्ति लक्षणावृत्ति और व्यंजनावृत्ति इन तीन वृत्तियों को स्वीकार किया है। प्राथमिकी वृत्ति अविधावृत्ति है। उस अविधावृत्ति से प्रतिमान जो अर्थ है उस अर्थ का वाद कोई वृत्ति नहीं कर सकती। सर्वप्रथम कहते हैं सुखदेव जी महाराज जी अत्रानुवर्ण्य देवीक्ष्यम विश्वात्मा भगवान हरि। यहाँ तो विश्वात्मा भगवान हरि का ही अंगित्वेन वर्णन किया गया है। ये सर्ग विसर्गादि जितने भी है ये सब अंगत्वेन वर्णित है राजन। केवल हरि जो सर्वाधार जगन नियंता जगदाधार है। देखो श्रीमद् भागवत में सविशेष ब्रह्म का भी वर्णन मिलता है, निर्विशेष ब्रह्म का भी वर्णन मिलता है, सगुण ब्रह्म का भी वर्णन है, निर्गुण का भी है, निराकार का भी है, साकार का भी है। लेकिन प्रधानतया यही समझ लेना चाहिए कि साक्षात जब वक्ता ही ये कहते हैं कि मैंने यहाँ प्रधानतया हरि का वर्णन किया है और श्रोता कहता है कि श्राव तो यज्ञ में साक्षात अनाद निरनो हरि। राजा परीक्षित भी यही कहता है कि महाराज आपने मुझे हरि का श्रवण करा। हरत बापान असौ हरि ही, उस हरि का ही यहाँ वर्णन है अंगित्वेन। और वर्णन तो भक्ति भक्ति जो है वो साधन भी है साध्य भी है। बहुत वक्ता है, समय थोड़ा है, अतः मैं अपने
श्री गुरुचरण उपस्थिता सम्माननीया हर भक्त प्रबोधन तत्परा वीरांत नारायण दासवर्या तथा समुपस्थिता अत्रत्या मथुरा निवासिना बलियांशो विद्वांसा तथा समुपस्थिता सदा प्रतिक्षणं हरिकीर्तन तत्परा साधव तथा समुपस्थिता तदनुरागिनो मथुरा नागरिका मातरः भगिन्यश्च। यद्यपि संस्कृत भाषायामेव मया सर्वं वक्तव्यं तथापि अत्रत्याः विराजमानाः श्रोतारः मदभिप्रायं ज्ञातुं समर्था भवेयुः इति कृत्वा ब्रजभाषा हिन्दीभाषायामेव किञ्चित् प्रस्तूयते।
बहुत ही सुंदर प्रश्न है भागवत का प्रतिपाद्य। वैसे प्रत्येक जितने भी ग्रंथ होते हैं उसमें चार वस्तु होती हैं, विषय क्या अधिकारी जो संबंध और फल। तो सबसे पहले कोई भी ग्रंथ लिखा जाता है तो उसका प्रधान विषय क्या है और उस विषय का अधिकारी कौन है और उस विषय से वर्तमान ग्रंथ का संबंध क्या है और इससे फल क्या होगा। तो यहाँ फल को और विषय को वास्तव में अलग अलग ही रखना चाहिए। फल में चाहे मुमुक्षुओं के लिए मुक्ति फल हो चाहे भक्तों के लिए भक्ति फल हो,
परंतु वास्तविक यहाँ है यह विषय, जो विषय शब्द का अर्थ है वही यहाँ प्रतिपाद्य शब्द का अर्थ है। विषय प्रतिपाद्य है और रही क्या कर, इसका अधिकारी तो शुश्रूष भी और कृत भी है। जिसने पूर्व जन्म में कुछ पुण्य किया है वही भागवत का वक्ता बन सकता है और वही भागवत का श्रोता बन सकता है, क्योंकि कृत भी नहीं होगा तब तक शुश्रूष भी नहीं हो सकता। जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभे। तो महाराज वो निराकार और साकार की जो हमारे मथुरा निवासी होते हुए भी हमारे वृंदावन रंग लक्ष्मी के हमारे प्राचार्य पद पर श्री नरहरी लाल जी हैं, जिनको संचालन करा रहे हैं, उनमें निराकार साकार सविशेष और निर्विशेष ब्रह्म की बात करी, उसी को लेकर के श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि अन्यत्र वेदांते वास्तवस्य ब्रह्मणा अवेद्यत्वम वेद्यस्य च अवास्तवत्वम। जरा समझने का चेष्टा करें, उनके यहाँ जो वास्तविक ब्रह्म है वो वेद्य नहीं है, वो ज्ञान का विषय नहीं है। शंकर मतमवलंब में मैं किंचित प्रस्तुत हूँ। उनका यदि जो वास्तविक ब्रह्म है वो अवेद्य है और जो साकारोन्नति न्याय न वेद्य है वो वास्तव नहीं है। वेद्य वास्तवत्वम नास्ति, वास्तविक वेद्यत्वम नास्ति। श्रीमद् भागवत की यह विशेषता है कि यहाँ वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु।